Om Shanti. Avyakta Vani, 6 July 1969. Teachers ke prati avyakta bap dada ke mahavakya. Panchva point hai. Avyakta vatan se bap dada bachchon ki service karne और साफ बनाने लिए आए हैं। बाप सेवा करते हैं। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक हैं। सेवा करने लिए सदैव तैयार हैं। बाप को कितना फखुर रहता है। हमारे बच्चे सिरमोर हैं, आँखों के सितारे हैं, जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है। उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने लिए आए हैं। बच्चे मिट्टी में खेलते खेलते मिट्टी लग गई है। मिट्टी उतारने के लिए, निकालने के लिए बाप आया है। मैंने तो सोने की दुनिया में खेलने के लिए भेजा था, पर तुमने उस सोने की दुनिया को मिट्टी की दुनिया बना दिया। बाप कहते हैं, हर्जा नहीं, वापिस मैं सोने की दुनिया बनाने आया हूँ, पर तुम मेरी बात मानो। जो मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ, समझ की बात है। तो बाप दादा अव्यक्त वतन से बच्चों की सर्विस करने के लिए आते हैं और बच्चों को साफ बनाने के लिए आते हैं। समझ की बात है बच्चे। इस बात को समझें कि बाबा क्यों आया है, क्या कारण है। तुम्हारे लिए आया है बाबा, समझ की बात है। तुम भूल गए हो कि तुम सोने की दुनिया में थे, अभी मिट्टी में हो। तुम्हें याद नहीं है, तुम भूल चुके हो। मैं याद दिलाने आया हूं कि हमारी दुनिया सतयुग थी, गोल्डन एज थी, जहां तुम सोने से खेलते थे। अभी सब मिट्टी का हो गया है। बच्चे याद करो, अपनी स्मृतियों को जगाओ। तुम कौन थे, क्या बने हो। वापिस बाप तुम्हें वही बनाने आया है। तुम इस बात पर ध्यान दो कि बाप आया है साफ बनाने लिए। बाप की श्रीमत पर चलो तो साफ बन जाएंगे। मनमत और परमत से गिरते आए हूँ, श्रीमत से ही ऊंच चढ़ोगे। श्रीमत पर ध्यान दो। संगम की श्रीमत है बच्चे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यह संगम की श्रीमत है। बाबा पूछते हैं सभी बच्चों को, क्या एक घंटे में कम से कम एक बार तुम्हें यह याद आता है कि बाप ने कहा है, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। याद आता है? एक घंटे में एक बार। जब तक तुम जगे हो 16 घंटे, तो कम से कम 16 बार तुम्हें याद आता है। एक साथ 16 बार मत करो, हर घंटे में एक बार की मैं बात कर रहा हूं। आधे घंटे में, 15 मिनट में तुम्हें याद आता है कि बाप की पहली मुख्य श्रीमत क्या है? क्योंकि बच्चे, जब तक तुम्हें याद नहीं आएगा, तब तक तुम याद नहीं करोगे। एक तो तुम्हें अपने को याद करके मुझे याद करना है, दूसरा तुम्हें ये याद रखना है, अभी तीसरा यह याद रखने के लिए किसी को रखे क्या कि तुम्हें याद दिलाए कि अरे बाबा को याद करना है। तुम्हें याद करना है ना, समझ की बात है। चलो बच्चे, ये भी किया कि यह याद दिलाने के लिए किसी को रखा, तुम याद करोगे? समझ है बच्चे, इसी संगम पर तुम मुझे याद करते हो, बाकी किसी समय में नहीं करते हो और कर भी नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है याद का। याद का ज्ञान यहां पर ही है, इसलिए याद पर ध्यान दो, बाप की याद। कभी अगर तुम्हें समय मिले करके देखना, हर 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1-2 मिनट में इस महावाक्य को याद करना, और 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड बाप को याद करके देखना कैसे लगता है। समझ है, कभी ऐसी भट्टी होनी चाहिए कि हर मिनट में कोई याद दिलाए कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ऐसी भी भट्टी होनी चाहिए, बड़ा मजा आएगा। ऐसे 8 घंटा चले, 8 घंटा देखो क्या होता है, अनुभव करके देखो। माना कम से कम 60 मिनट में 60 बार, 60 सेकेंड तो याद कर पाओगे जब कोई याद दिला रहा है, बड़ा अच्छा लगेगा। याद का 1 सेकेंड भी बहुत बड़ा होता है। बस बच्चे याद करें। बाबा क्यों कहता है इतने वर्षों से, जब से बाप आया है, कि बच्चे मुझे याद करो? उसे कुछ अच्छा लगता है क्या आप याद करते हो तब? उसे कोई शौक है क्या कि आप उसे याद करो तो उसका कोई शौक पूरा हो जाएगा? ऐसी कोई बात है क्या? तो ऐसी क्या बात है जो बाबा इतने वर्षों से कह रहा है, हर मुरली में कितनी बार कहता है, तो ऐसी बात क्या है? बच्चे चेक करें, कभी इस पर विचार सागर मंथन करें। कहीं कभी बाप कहता है कि याद में सारी प्राप्तियां हैं, क्या है वो तो देखे बच्चे। बाप कहता है कि याद से विकर्म विनाश होते हैं, दुख दूर होते हैं। बच्चे अनुभव करके देखें, होते हैं या नहीं होते हैं, करके तो देखें, अनुभव करें। याद में सुख शांति है, खुशी है, मौज है। बच्चे करके देखें कितना है, अनुभव करें। अनुभव का खेल है। तो बच्चे अभी घर जाना है, खेल पूरा हुआ। तुमने बहुत मैदान मार लिया, अभी घर चलो, बहुत खेल खेले, अभी घर चलने के लिए सफाई करनी पड़ेगी, सफाई याद से होगी, और कोई उपाय नहीं है सफाई का। ऐसे भी तो कोई बात नहीं है कि तुम्हें मशीन में डाल दिया और तुम साफ हो गए। हाँ, वो मशीन है ऊपर धर्मराज की, पर वो बहुत खतरनाक मशीन है। इससे अच्छा यहाँ ही अपने से अपने आप को साफ करो, बाल्टी और लोटा लेके अपने को साफ करो, थोड़ा थोड़ा योग करके अपनी सफाई करो, बाप को याद करके। उस मशीन में तो चक्कर आ जाएगा, ऐसा चक्कर आएगा कि कहेंगे कि दोबारा नहीं करेंगे ऐसे, ऐसी मशीन है ऊपर धर्मराज की। तो बच्चे साफ बन के जाना है, साफ होके जाना है तुम्हें, स्वच्छ होके चलना है। घर में बाप लेने लिए आया है, अभी चलने की तैयारी करो, अब घर जाना है, समझ की बात है। तो बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने लिए आए हैं, साफ करने के लिए आए हैं, सर्विस के लिए आए हैं बाप दादा। तो बच्चे ध्यान दे सफाई पर कि बाबा कैसे सफाई कर रहे बच्चों की, हरेक को समझा रहे इतने वर्षों से। तो बच्चे समझदार बनो, समझ लो और स्वच्छ हो जाओ, घर जाना है। ये दुनिया अपनी नहीं है, ये पराई दुनिया है, इस पराई दुनिया में क्या मन लगाना। परायों में मन लगाया तो सजा मिलती है, दुनिया का असूल है। इसलिए पराई दुनिया में मन नहीं लगाना, तुम बाप में मन लगाना, अपनी दुनिया में मन लगाना। अपनी दुनिया है ना ऊपर, सुखधाम में मन लगाना। ये दुनिया अपनी नहीं है, इसलिए यहां से मन को हटाओ और आगे बढ़ो। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने लिए आए हैं। बाप सेवा करते हैं, बाप का काम है बच्चों की सेवा करना, ये बाप का काम है। सेवा अर्थ बाप आया है, जब से आया है बच्चों की सेवा करता रहता है। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक हैं, सेवा करने लिए सदैव तैयार हैं। बाप सेवा कर रहा है, शुरू से लेकर अंत तक करेगा, करता रहेगा। यही मेरा पार्ट है, यही मुझे करना है। ज्ञान से सेवा करनी है, समझ से सेवा करनी है, बच्चों को समझ देनी है, ज्ञान देना है और उन्हें भरपूर करना है, साफ करना है, स्वच्छ करना है। समझ की बात है। सेवा करने लिए सदैव तैयार है, बाप सदैव तैयार है। बस बच्चे समझे कि बाप कौन सी सेवा करता है। बाप ज्ञान की सेवा करता है, बाकी नहीं करता, बाकी मेरा काम नहीं। किसी का बच्चा मरा, पति मरा, बाबा कहते मेरा काम नहीं है उसे जिंदा करना। शायद तुम्हारी दुनिया में कोई हो जो आत्मा को वापस लाए, उसके पास लेके जाओ, मेरा ये धंधा नहीं है। किसी की नौकरी ठीक करना है, किसी का बिजनेस ठीक करना है, परिवार ठीक करना, ये मेरा धंधा नहीं। मेरा धंधा है सिर्फ ज्ञान देना, समझ देना, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। इसलिए जिसे समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, वही बच्चे बाप के पास आए, क्योंकि बाप कुछ नहीं करेगा। और यहां भी बाप जो साफ बनाने लिए आया है वो साफ खुद नहीं करता, तुम्हें साफ सफाई का ज्ञान देता है। साफ सफाई तुम्हें ही करनी है, मैं नहीं करूंगा, मेरा पार्ट नहीं है, तुम करो। अपने से सेवा करने लिए सदैव तैयार है। बाप को कितना फखुर रहता है, हमारे बच्चे सिरमौर हैं, आंखों के सितारे हैं। बाप बच्चों पर सदा कुर्बान रहता है, सदा बलिहार रहता है। बाप के लिए बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं। उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, श्रीमत अनुसार, ध्यान में रखना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, श्रीमत अनुसार, जैसे बच्चे वैसे बाप, उनको नूरे रतन बना के रखता है। अभी सभी का तो पार्ट नहीं है कि ब्रह्मा के जैसे, मम्मा के जैसे बाप के नूरे रतन बने, ऐसे तो पार्ट है नहीं। बाप की आंखें बने, बाप की वाणी बने, ऐसे तो पार्ट है नहीं सभी का। तो बाबा कहते हैं जो है ऐसे बच्चे ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान, उन्हें बाप सिर पर रखता है, पलकों पर रखता है। वो बच्चे बाप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है, वो सब कुछ है, जैसे कि आंखों के सितारे हैं वो। बाबा कहते हैं हर बच्चा अपने को चेक करे, हम बाप के आंखों के सितारे कहाँ तक बने हैं, क्योंकि बाप की नजरों में आना यही इस संगम का श्रेष्ठ भाग्य है, समझ की बात है। जैसे मधुबन आते हो, लगता है ना कि बाप की दृष्टि मुझ पर पड़े, बाप की आंखें मुझे देखे, बाप आंखों के द्वारा मुझे देखे। कभी कभी टोली के लिए स्टेज पर आते हो, क्यों आते हो, लगता है ना भले एक सेकेंड ही से या एक मिली सेकेंड ही से, पर बाप हमें देखे, लगता है ना। तो बाबा कहते हैं तुम चेक करो, तुम आंखों के सितारे हो क्या, समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे चेक करें, बाप को कितना फखुर रहता है, हमारे बच्चे सिरमौर हैं, आंखों के सितारे हैं। जिनों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है, बच्चों के लिए बाप स्वर्ग बना रहा है, उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। बच्चों को बाप तैयार कर रहा है। एक राजा के चार बच्चे हैं, तो राजा चारों को राजा नहीं बनाता, चारों में से जो लायक होता है उसी को चुना जाता है और उसी को राजा बनाया जाता है। चांस तो सभी को है कि सभी बच्चे लायक बने और चारों बच्चे राजा बने, हो सकता है, होना भी संभव है। बस अपनी अपनी पात्रता को सिद्ध करें और राजा ही ले। इसलिए बाबा कहते हैं बाप तो तैयार कर रहा है, पर तुम कितने तैयार हो रहे हो ये तुम देखो, तुम्हारे ऊपर है। राजा बनना है दुनिया में तो ऐसे तो नहीं होता कि थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की उससे तुम राजा बन सकते हो, कभी नहीं। फुल टाइम पढ़ाई करनी पड़ती है, तो तुम्हारी इस दुनिया में तुम्हारी बड़ी डिग्रियां पाने के लिए भी पार्ट टाइम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तुम्हें बड़ा आईएएस आईपीएस होना है, डॉक्टरेट पानी है, डबल डॉक्टरेट पानी है, और भी कोई बड़ी डिग्रियां है, पार्ट टाइम नहीं होता। उसके लिए जीवन बलिहार करनी पड़ती है, न्योछावर करनी पड़ती है। उसमें भी कितने बलिहार होते हैं, अपनी जीवन दाव पर लगाते, उनमें से कोई निकलते हैं, हजारों लाखों में से कोई ही पास होते हैं। दुनिया की पढ़ाई की बात कर रही, ये तो सबसे बड़ी पढ़ाई है विश्व महाराजन की। इस विश्व महाराजन की पढ़ाई के लिए बाबा कहते हैं तुमने 83 जन्म भी न्योछावर किए फिर भी कम है, ध्यान में रखना, क्योंकि पद बड़ा है। किसी किसी की आयु चली जाती है, ये तुम्हारे दुनिया की बड़ी पढ़ाई पढ़ते 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 फिर भी पास नहीं हो पाते। कोई कोई बूढ़े होने तक आते तब जाके पास होते, बड़ी खुशी होती कि डिग्री पा ली। बाबा कहते ये कितनी बड़ी पढ़ाई है, तुम विचार करो। उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, बाबा तैयार कर रहे हैं बच्चों को। अभी तैयार होना बच्चों के ऊपर है। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते हैं, तो इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए हैं। कोई बच्चे हैं कहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, शाम को कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे, रात को उसी नशे में होते हैं, उसी नशे में सो जाते हैं। रात को सपने में यह आता है कि हम लक्ष्मी नारायण बन गए, सुबह जग जाते हैं सोडा वाटर हो जाता है। आसान नहीं है। जिनके नाम का जप करके दुनिया को सुख मिल रहा है वो बनना कोई मामूली बात नहीं है। लक्ष्मी नारायण के नाम का जप होता है ना, तब धन मिलता है, किसी को राज्य मिलता है, कोई गुणवान बनता है। इनके जप से, लक्ष्मी नारायण के नाम पर कितने मंत्र बने, कितने स्तोत्र बने, कितने पाठ बने हैं, इन्हें पढ़कर, इन मंत्रों को जप कर लोग सुख पाते हैं, शांति पाते हैं, यहाँ की धन पाते हैं, वो बनना कोई मामूली बात नहीं है। बाबा कहते हैं उसके लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा, सर्वस्व त्याग। जैसे बाबा कहते थे ना आपको सभी को उस दिन कि ऐसा कौन सा संत है जो बिना त्यागे संत बना है, एक भी उदाहरण बताओ जो बिना त्याग के संत बना है। कोई घर में रहे हैं लेकिन अपने ही नशे में चले, उन्हें घर का कोई भान ही नहीं था, परिवार का, संपत्ति का। संत बनना, महात्मा बनना सबके बस की बात नहीं है, उन्हें दुनिया फॉलो करती है, ध्यान में रखना। या तो तुम ऐसे बनोगे कि तुम्हें दुनिया फॉलो करेगी, या फिर तुम ऐसे बनोगे कि तुम दुनिया को फॉलो करोगे, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं हो सकते। संत जिन्होंने सब त्यागा, दुनिया उन्हें फॉलो करते हैं, समझ की बात। जिन्होंने नहीं त्यागा वो उन्हें फॉलो करते हैं, वो दुनिया वाले ही रहते हैं। त्याग मना संपूर्ण त्याग, बाबा कहते हैं आधे अधूरे त्याग से नहीं बन सकते, समझ की बात है। बच्चे इस बात को समझें वरना गफलत हो जाएगी, तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़ कर फिर भी गफलत करते रहते हैं। बाबा कहते हैं गलतियां करते रहते हैं बच्चे, बच्चे निश्चय पक्का रखो तुम्हें क्या बनना है, वो बनो, उस दिशा में चलते रहो। बाप तो चाहेगा कि नेक्स्ट लक्ष्मीनारायण तुम ही बनो, पर उसके लिए संपूर्ण त्याग चाहिए और संपूर्ण बाप चाहिए बुद्धि में। समझ की बात है, ऐसे ही नहीं मिलता सब कुछ। त्याग से तपस्या होती और तपस्या से फल मिलता है, बिना त्याग के किसी की तपस्या नहीं होती। त्याग के बाद तपस्या भी क्यों होती है, क्योंकि वैराग्य आ जाता है, वैराग्य से तपस्या होती है, बिना वैराग्य के तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या के लिए वैराग्य लगता है, इसलिए वैराग्य की निशानी जैसे शंकर स्वरूप दिखाया है, वैराग्य की निशानी है वो। भस्म लगाते हैं ऐसे दिखाए हैं, भस्म वैराग्य की निशानी है, राख वैराग्य की निशानी है और कुछ नहीं। सब त्यागा उसकी निशानी है वो राख, उसी से तपस्या होती और तपस्या से फल मिलता है। तो बच्चे ध्यान देना, गफलत नहीं करना। तो इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए हैं। अंतमति सोगति, समय नहीं है। बच्चे तुम्हें बहुत आसान लगता है अंतमति सोगति, कि एक सेकंड ही लगता है, इतनी क्या बड़ी बात है बाप को याद करना एक सेकंड के लिए। बच्चे माया उसी समय सारा संसार तुम्हारे सामने लाती है। समझ की बात है, आज ये बात आपको बताते हैं। जो बच्चे लगातार 10 साल बाप को याद करते हैं, उन्हीं के अंतमति में बाप रहेगा। 10 साल रोज, वो भी लगातार, बाप की याद भूली ही नहीं है, उन्हीं को अंतमति में बाप याद आ सकता है, वरना बाबा कहते भूल जाओ, पॉसिबल नहीं है। एक चक्र बदलने में 10 साल लगते हैं, जीवन का चक्र, जो तुम्हें जीवन मिली है। इसलिए 12 साल की तपस्या है, 12 साल की तपस्या में 10 साल लगते हैं उस तपस्वी को संसार भूलने में, तब जाके 2 साल की तपस्या कर पाता है वो तपस्वी, वो योगी, तब उनके तपस्या को 12 साल का तप गिना जाता है, तब उन्हें योगी का टाइटल मिलता है, तपस्वी का टाइटल मिलता है। समझ की बात है, इसलिए 10 साल लगेंगे संसार भुलाने के लिए, ये बहुत काल का अभ्यास है, कोई मामूली बात नहीं है। बाबा कहते हैं आसान नहीं समझना अंतमति सोगति। अंत में बाबा कहते हैं मैं अगर दिखाऊं किसको क्या क्या याद आया हंसोगे तुम, बस बाबा कहते हैं ड्रामा नहीं है, मैं दिखाऊंगा नहीं, अंत में तुम्हें खुद पता चलेगा। जब ड्रामा एंड होगा, ड्रामा समाप्त होने से पहले सब तुम्हारे सामने होगा, तो किसने क्या क्या किया, किसको क्या क्या याद आया तुम्हें पता चलेगा अंत में। तब तक घर चले जाएंगे, समझ की बात है। इसलिए अंतमति सो गति आसान नहीं है, ध्यान में रखना, तुम जितना समझते हो उतना आसान नहीं है। अंतमति सो गति, कभी कभी कोई सवाल बहुत आसान होता है पर जवाब आसान नहीं होता उसका। सारी धरती भी छान मारो फिर भी जवाब नहीं मिलता, ऐसे भी कोई सवाल होते हैं। इसलिए ये भी उनमें से एक सवाल है, अंतमति सोगति। ध्यान देना बच्चे, अंतमति सोगति, समय नहीं है, समय बहुत नजदीक आने वाला है। आप शेरनी शक्तियों को बुझाए तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो न शक्ति सेना बन सकेंगे, न वह शक्तिपने के अलंकार आएंगे। बाबा कहते हैं आप शेरनी शक्तियों को बुझाए तैयार करनी है। सभी बच्चे बाबा के, सभी बच्चे, सभी आत्माएं शेरनी शक्तियां हैं सभी। फिर बाबा कहते वो फिर पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो, सभी आत्माएं शेरनी शक्तियां हैं। सबको बुझाए तैयार करनी है, दुश्मन से लड़ना है। कौन सा दुश्मन? जो दिखता नहीं, जो आके तुम्हारे मन को पकड़ता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता उस दुश्मन ने तुम्हारे मन को कब पकड़ा, तुम्हारे बुद्धि को पकड़ लेता है, तुम्हारे संस्कारों को भी पकड़ लेता है। तुम्हें उस घड़ी ऐसे दिखाता है कि तुम अपने अवेयरनेस में हो, पर बाबा कहते हैं ध्यान से चेक करो, तुम्हें पकड़ा है किसी ने, तुम्हारी कर्मेंद्रियों को पकड़ता है, गुप्त है दुश्मन, इसे सिर्फ योग बल से हरा सकते हो, बाहुबल से इसे नहीं काट सकते, नहीं मार सकते, योग बल से ही इसे हरा सकते हो, और कोई उपाय नहीं है, ना दिखने वाला है। कहाँ तलवार चलाओगे, किस दिशा में चलाओगे, किस दिशा में भाला चलाओगे, किस दिशा में तोप चलाओगे, कोई दिशा ही नहीं इस दुश्मन की, और किस रास्ते आएगा कोई गारंटी नहीं है। ये परमत से आता है, कान के रास्ते, आंखों के रास्ते परमत से आता है, मनमत से आता है, कंठ के रास्ते, मन के रास्ते मनमत से आता है। इसे कोई बंधन नहीं है, ये कभी भी किसी में भी प्रवेश हो सकता है, सूक्ष्म है ये। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम भी सूक्ष्म हो जाओ। जब तुम सूक्ष्म हो जाओगे तो इस दुश्मन को जो सूक्ष्म है उसे भी पहचान लोगे। हाँ, काम आया, मन में काम के विचार चल रहे हैं, काम आया, जैसे पता चला भाग जाएगा। हाँ, क्रोध आया, क्रोध के बाल बच्चे आए, इरिटेशन आया, गुस्सा आया, नाराजगी आई, उदासी आई, आए। बाबा कहते कारण कुछ भी होने दो, किसी ने तुम्हें थप्पड़ भी मारी, लात भी मारी, पर क्रोध आया, मना वो अंदर प्रवेश हुआ, ध्यान देना। हाँ, लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया, तुम्हें पता भी नहीं चला वो कहाँ से आया। बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, तुम्हारी हर सेल में 5 विकार बैठे, हर सेल में। किस किस से छूटोगे, किस किस से भागोगे, हर सेल में। क्या शरीर को मारोगे? तुम्हारे एक सेल ही काफी है तुम्हारे मन को चलाने के लिए, एक सेल, एक सेल में 5 विकार और उनके बाल बच्चे, पूरी फैमिली निवास करती है एक सेल में। तुम्हें विज्ञान पता नहीं, सूक्ष्म विज्ञान, वहां वो निवास करते हैं, कैसे निकालोगे? इससे अच्छा अपने को आत्मा समझो। जब तुम अपने को आत्मा समझोगे तभी उस सेल से वो समाप्त होते जाएंगे। अगर तुमने अपने को देह समझा तो जन्मने वाले हर सेल में वो पैदा हो रहे हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारा मन चलाने के लिए बाहर से कुछ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शरीर से ही तुम्हारा मन चलाया जाता है, शरीर से अंदर से तुम्हें पता भी नहीं चलता। समझ की बात है, तुम्हारी बुद्धि चलाई जाती है, तुम्हारे आसुरी संस्कारों को इमर्ज किया जाता है अंदर से, सारा खेल अंदर है बच्चे। इसलिए इस दुश्मन को समझो, सूक्ष्म है, देही अभिमानी अवस्था में आओ। जितना बाप को याद करोगे उतना ये समाप्त होते जाएंगे, फिर सेल सेल शुद्ध होती जाएगी, फिर तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर काम का कोई अंश भी नहीं रहेगा, लोभ मोह अहंकार जरा भी नहीं होगा। देखिए ये विचित्र बात है पर कह रहे, तुम्हारे सामने तुम्हारे चेहरे पर कोई थूक भी दे फिर भी तुम अति शांत अवस्था में हो रहेंगे, हंसता हुआ चेहरा, ये तुम्हारी अवस्था होगी अति शांत। फिर तुम्हें टाइटल दे सकते हैं संत आत्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, पावन आत्मा, अति शांत, कोई अहंकार नहीं। तुम तपस्या में बैठे हो और कोई आके लात मार के गिरा के भी जाए फिर भी तुम हंसते हंसते उठोगे, वापस तपस्या में बाबा की याद में बैठ जाओगे, ऐसी अवस्था योगी की अवस्था। बाबा कहते ऐसी अवस्था आनी चाहिए बच्चों की, इतनी ऊंच अवस्था, इतने प्रेम स्वरूप, नम्रता स्वरूप आने चाहिए। बाबा कहते कर्म छोड़ो, बोल से ही तुम प्रभावित होते हो, बोल से ही तुम्हारे अंदर के सब जागृत होते हैं। जब भी पांच विकार और उनके बाल बच्चे जागृत होते हैं तो हर सेल में जो है वो मजबूत होते हैं, ध्यान में रखना। इसलिए विकारों को जागृत होने नहीं देना, गुणों को जागृत रखना, अपने आप को जागृत रखना, बच्चे ध्यान देना। अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो न शक्ति से ना बन सकेंगे, न वह शक्ति पने के अलंकार आएंगे। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, क्या तुम्हें निश्चय है? तुम्हें निश्चय नहीं है, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं है, तो तुम कैसे बन पाओगे शक्ति सेना? नहीं बन पाओगे। और अगर शक्ति सेना नहीं बने तो शक्ति पने के कोई अलंकार नहीं आएंगे तुम्हारे पास, गुण शक्तियां कुछ भी नहीं आएगा। सूक्ष्म दुश्मन से लड़ने के लिए लड़ाई अंत तक है, जीत हमारी निश्चित है, उसमें कोई दूसरी बात ही नहीं, बच्चों की ही जीत है निश्चित। पर सभी बच्चे नहीं जीतेंगे ना, बात यही है। जो श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत अनुसार लड़ेंगे, वही जीतेंगे, बाकी हार जाएंगे मनमत परमत वाले। तो बच्चे चेक करो, बाप दादा का पूरा परिचय है तुम्हें? बाप दादा का पूरा परिचय होगा तो ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा। जिस बच्चे को बाप दादा का पूरा परिचय है, बाप ने कहा यहां ही बैठना एक मास तक, यहां से हिलना नहीं, तुम्हें भोजन पानी सब यहां ही मिलेगा, वही बैठेगा जिसे परिचय, फिर उसे कोई परवाह नहीं कि उनके आगे पीछे क्या हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? बाप दादा का पूरा परिचय है कि कहने वाला कौन है, ज्ञान देने वाला कौन है। बच्चे समझो इस बात को। आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये व्यवस्था है, ये करना है, ये सेवा है, ये कार्य है, नहीं। बाप की श्रीमत के आगे कुछ नहीं होता। बच्चे ध्यान देना, बाप की श्रीमत के आगे कुछ नहीं होता। वो निशानी है कि उन्हें बाप दादा का पूरा परिचय हो, परिचय है। सारी दुनिया एक बाजू में और वो बच्चे एक बाजू में, सारी दुनिया भी अपोजिशन में खड़ी हो जाए फिर भी, जैसे सारी दुनिया भी अपोजिशन में खड़ी हो जाए फिर भी वो खड़े रहेंगे, क्योंकि कौन साथ खड़ा है? बाबा खड़ा है। सारी दुनिया भी ऐसे बच्चे, बाबा कहते इन्हें परिचय है बाप दादा का, कौन बैठा है। बच्चे ध्यान देना। देखो बच्चे, ये बात भी आपको समझाते हैं, जब तक तुम्हें परिचय नहीं है कि कौन बैठा है, तुम सामने बैठना नहीं, वरना बोझा चढ़ेगा माथे पर। बाप की बात मान सकते हो, बाप की श्रीमत पर चल सकते हो, तो ही सामने बैठना, वरना नहीं बैठना। कभी बाप के आगे नहीं आना, बोझा चढ़ेगा। और ये बोझा उतारने के लिए कोई राजयोग नहीं है, सिर्फ सजाए ही है। इसलिए जिस बच्चे को बाप का पूरा परिचय नहीं है, उस बच्चे को बाप के सामने नहीं आना चाहिए। बच्चे ध्यान देना, तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूं। पहले से 63 जन्मों के पापों का बोझा माथे पर है, वो उतारने में ही तुम्हारा संगम युग जा रहा है, मौज रही दूर में। ऊपर से ये बोझा चढ़ाओगे फिर और बेड़ा गर्क हो जाएगा। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। और बाप के आगे कोई भी कभी भी ना आए, ये बैठने वाले बच्चे ध्यान दे, क्योंकि बेचारे उस बच्चे पर बोझा बैठेगा, उसे पता नहीं कि सामने कौन बैठा है, और वो अपने हिसाब से चलेगा अपनी मनमत पर। बोझा दोनों पर बैठेगा, लाने वाले पर भी बैठेगा और जो आया है उस पर भी बैठेगा। बच्चे ध्यान में रखना, बाप आदि से वार्निंग देता है ब्राह्मणियों को कि बाप के सामने यहाँ किसी को भी लेके नहीं आना। बच्चे ध्यान देना, इस बोझ को उतार नहीं सकते कोई। लाया वो भी गया और जो आया वो भी गया, दोनों का बेड़ा गर्क। इसलिए पहले पूरा परिचय रखो बाप दादा का, बाबा का, बाप का, फिर सामने बैठो। और सामने बैठ रहे हो, श्रीमत मान सकते हो तो ही सामने बैठो, श्रीमत पर चल सकते हो तो ही सामने बैठो, वरना नहीं बैठना। बच्चे बोझा बैठेगा, ध्यान देना। श्रीमत और बाप कोई मामूली वस्तु नहीं है, मामूली चीज नहीं है, जिससे जीवन बदलती है, दुनिया बदलती है, कलयुग का सतयुग होता है, वो है श्रीमत और बाप। इसलिए बच्चे ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान दे इस बात पर कि बाप के सामने कोई भी ना आए, जिसे पूरा परिचय है, जो पूरा बलि चढ़ने के लिए तैयार है, जिसे पूरा निश्चय है बाप ही बैठा है, वही आए। वरना और एक बात बताते हैं, अगर उसे संशय उठा तो लाने वाला भी संशय में जाएगा। वचन ध्यान में रखना, वो माया का काम है, माया बैठी है लाने वाले को संशय में लेके जाने के लिए, माया बैठी है। चिंता नहीं करना, दोनों गए काम से। इससे अच्छा बच्चे दूर से पुरुषार्थ करे, जो मुरली आती है, जो श्रीमत आती है, जो निश्चय बुद्धि है, वही आके सामने बैठे। समझ की बातें बच्चों के लिए, सभी के लिए। बाप दादा का पूरा परिचय नहीं तो न शक्ति सेना बन सकेंगे, न वह शक्ति पने के अलंकार आएंगे। अगर शक्ति अपने में धारण की तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा और वह सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। जिन बच्चों ने धारणा की है पूरी पूरी, वही दूसरों को करा सकते हैं, बाकियों से नहीं हो सकते। जिनके अंदर आत्मा की धारणा नहीं है, वो आत्मिक स्थिति का ज्ञान नहीं दे सकते। तुम झूठ बोल रहे हो, ज्ञान सच्चा है पर तुम्हारे अंदर धारणा नहीं है और तुम आत्मा का सत्य ज्ञान बता रहे हो, माना तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुमने धारणा नहीं की है। जिसने धारणा की है उसके ज्ञान को सत्य माना जाएगा, सत्य समझा जाएगा, सत्य अनुभव किया जाएगा। इसलिए बच्चे, धारणा के बिना किसी को ज्ञान कभी नहीं देना। धारणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना धारणा के किसी को तुम नहीं सिखाना, समझ की बात है। और अगर सिखाने की नौबत आए तो हमेशा ये कहना, बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं आत्मिक स्थिति में आने की, तो फिर सामने वाला मानेगा और उस धारणा पर चलेगा। बच्चे ध्यान देना, और वह सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर तुमने धारणा की तो तुम्हारी धारणा देखकर वो भी शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने, खामियां सब निकाल स्वच्छ बनना है। बाबा कहते हैं अपने को सच्चा जेवर बनाना है, सच्चा जेवर सोने का, खामियां निकाल स्वच्छ बनना है। बच्चों को ध्यान देना है। बच्चे, एक मास के लिए तुम्हें होमवर्क देते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए और क्रोध का अंश भी नहीं आना चाहिए। इरिटेशन, नाराजगी, उदासी, ये सब क्रोध के अंश हैं। एक मास के लिए ये होमवर्क है, देखते हैं कितने पास होते हैं, कितने नंबर वन में आते हैं, देखते हैं एक मास के लिए। आज से, समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे इस बात को समझे अच्छे से, बाप बैठा है ना स्वच्छ बनाने के लिए, तुम्हें स्वच्छ करने के लिए, तो अभी ये धारणा धारण करो। सोना कितने किस्म का होता है, कोई 9 कैरेट, कोई 12, प्योर तो प्योर ही है। बाबा कहते हैं प्योर सोना बनना है, सच्चा सोना, कैरेट में नहीं जाना, कैरेट कैरेट ही है, तुम्हें प्योर बनना है, एकदम सच्चा। सच्चा सोना ऐसे होता है जो कोई हाथ में पकड़े तो दिमाग और शरीर लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, ये सच्चा सोना है। अभी का तो सारा नकली सोना है, बल तुम्हें कहा जाता है 24 कैरेट है, नहीं है, सब मिलावट है। सच्चे सोने का गुण ही है, हाथ में पकड़ते ही शरीर पूरा लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, अशुद्धियां समाप्त हो जाती है, जैसे कि अनुभव होगा शरीर की, मन शांत हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, शुद्ध संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। सोने का गुण है, ऐसे सोने की दुनिया नहीं आ रही है, और बाबा ऐसे ही गोल्डन 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 एज नहीं कहता, सोने की इतनी महिमा ऐसे ही नहीं करता बाबा, है उतना महिमा करने योग्य, अभी तो सच्चा है ही नहीं, इसलिए सोने के बारे में किसी को पता नहीं है कि सच्चा सोना कैसा होता है, सब मिलावट है आज की सब कुछ, भल तुम्हें प्योर दिखाया जाता है पर सारी मिलावट है, ध्यान में रखना। 100% प्योर किसी पर लिखा हुआ मिलता है कभी? 99.999 मिलेगा आपको, 100% नहीं मिलेगा, तो वो जो 0.001 जो भी है या 0.0001 जो भी है वो क्या है? मिलावट है, और उसी मिलावट ने सोने को नीचा कर दिया है, ध्यान में रखना। बाबा कहते यही तो वो बात है, प्योर तो प्योर ही है, इसलिए बच्चे सच्चा सोना बनो जिसमें कोई खाद नहीं होती अवगुणों की, कोई खाद नहीं होती, अंश मात्र भी रहा फिर भी सच्चा सोना नहीं कह सकेंगे, तो बच्चे सच्चा सोना बने, बाप को अच्छा लगेगा, सच्चे सोने के युग में जा रहे हैं, तो यहां सच्चा सोना बनना है बच्चों को, बच्चे ध्यान दें और बने। तो बच्चे बनते चलो, श्रीमत पर चलते चलो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की श्रीमत पर चलते रहना, सदा मौज में रहना। बाप मिला, फिकर किस बात की, चिंता किस बात की, जो पाना था सो पा लिया, अभी कल भी शरीर छोड़ने की बात आए, ड्रामा आए, फिर भी तैयार है। ऐसे बच्चे रहे बेफिक्र, बेफिक्र बादशाह, संपूर्ण बेफिक्र बादशाह, ऐसे बच्चे चले बड़े मौज वाले। देखो, बाप के बच्चे होकर दुखी रहते हो अच्छा नहीं लगता, शोभा भी नहीं देता और मैच भी नहीं होता कि तुम बाप के बच्चे हो। सदा मौज में, सदा सुख में, किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे। कितने फखर में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, इसका कितना अहंकार क्रिएट करना है करो, करो जितना करना है अहंकार। अभी हम कह रहे हैं अहंकार क्रिएट करो, किसके बच्चे हैं? दुनिया में कोई बड़े व्यक्ति का बच्चा होता है कहता है पता है किसके बच्चे हम? बाबा कहते हैं अभी तुम भी अहंकार क्रिएट करो, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद खुद को ही बताओ पता है हम किसके बच्चे हैं? हम शिव बाबा के बच्चे हैं। जितना अहंकार करना है करो क्रिएट, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये अहंकार तुम्हारा पूरे यूनिवर्स में भर जाए कि हम ईश्वर की संतान हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हर कण में तुम्हारा अहंकार भर जाए कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। समझ की बात, रोज अपने को याद दिलाओ, जितना समय याद दिला सकते हो दिलाओ। समझ की बात। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो।
पदम 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 गुण याद प्यार गुण ऐश्वर्यम् परिवाहनुः मायम् मे स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना शुक्रिया बाबा अच्छा ओम शांति।
ओम शांति।